और उस रास्ते से किसी को न चलने दे। घर वाले सब अब तो कोई घर में था नहीं, और वो जो गोकर्ण वो तो बेचैन तो भाग गई वहां से, और गोकर्ण उसका जो भैया था वो तीर्थ में चला गया। तीर्थ में उसको पता चला कि हमारा भाई मारा गया है, तो गया में पिंड दिया, पुष्कर में पिंड दिया, कुछ भी नहीं हुआ। जब घर में कुछ दिनों के बाद मैं लौट करके आया तो गांव वालों ने कहा जिस घर में मत जाना, इसमें भूत है, प्रेत है, तुम्हारा भाई प्रेत हुआ है, आज मैं यहीं रहूंगा। भगवान का स्मरण करता हुआ वहां पर रह गया। रात में बड़ा उत्पात, कभी भैंस का रूप, कभी भैंसे का रूप, कभी बाघ, कभी कूच हो करके आए और पत्थर मारे और सब मारे। उन्होंने कहा कि तुम है कौन। तब वो रोने लगा और रो करके बोला जे मैं तुम्हारा भैया धुंधकारी हूँ, मैं ऐसे ऐसे मरा, यहाँ पर प्रेत होकर के पड़ा हूँ, मुझे भूख लगती है, पी नहीं सकता पानी, खाने की सभी चीजें मैं छू नहीं सकता, आग दिन रात शरीर को जलाए रखती है, मलबे जल रहा हूँ, आप मुझ पर करुणा करें, यह मेरा किस प्रकार से उद्धार हो। अच्छा ठीक है। तब वो गए सूर्य की उपासना की, सूर्य ने कहा जी श्रीमद भागवत का तुम पाठ करो और ये इसका उद्धार हो जाएगा। वहां से आकर के उन्होंने एक हरा बांस रखा और उसमें उसको मंत्र के द्वारा बुलाया और वो मंत्र के द्वारा वो प्रेत उसमें आया और भागवत को उन्होंने पाठ, पहला दिन पाठ किया उसकी एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सात गांठ का बांस, सातवें दिन एकदम जब पूरा भागवत हो गया, विमान स्वर्ण का आया और उसको लेकर के चला गया धुंधकारी को, एकदम सुंदर चतुर्भुज रूप धारण किया और परम प्रसन्न होकर के उसको बैकुंठ के दूत ले गए। अब इनको संदेश हुआ जो पाठ कर रहे थे प्रवचन गोकर्ण जी, भाई हम लोग इतने सुन रहे थे और मैं बोल रहा था वो तो चला गया और हम यहीं पर रह गए और इतने आदमी जो सुन रहे थे वो रह गए, क्यों? फिर उसका समाधान ये हुआ भगवत वाणी के द्वारा, जिस नियत से वो सुन रहा था, जिस आग्रह से सुन रहा था, जिसको पालन करने के आग्रह से नियत से सुन रहा था, आप लोग उस आग्रह से, श्रद्धा से और आदर से नहीं सुन रहे थे और न बोल रहे थे, अब फिर से उसी रूप में आप बोलिए और सुनिए तो देखिए क्या। फिर उन्होंने भागवत सात दिन का किया और सब लोगों ने मनोनिवेश करके सुना, साथ ही साथ में सब लोगों की मुक्ति भी हो गई और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। ये दो श्रीमद् भागवत में, इसके स्कंद पुराण में इसके महात्म्य, किंतु यह बात ठीक है यदि कोई भागवत मन से सुनेगा, कोई सो मत, कोई आंख बंद मत करो, मन से इसे सुनो, यदि पालन भी नहीं कर सकोगे सुनोगे भी तो अभी कुछ फल जरूर होगा, अवश्यमेव होगा। आज अभी 8:15 होने जा रहा है, मैं आज आरंभ थोड़ा सा करके कल से फिर मैं कहूंगा, आज थोड़ा सा आरंभ कर रहा हूं। कलयुग को आने में, कलयुग क्रय आने ही वाला था। कलयुग माने क्या? कलिंग कलहं लाती थी कली, यहां पर बिना किसी कारण के ही कलह होता है। पति और पत्नी चाहते हैं कि हम बड़े प्रेम से रहें, किंतु कोई न कोई ऐसी समस्या आ जाती है बिना कारण की ही, बिना बुलाए पति और पत्नी में भी प्रेम नहीं रहता, कलह हो जाता है। बच्चों को इसलिए हम उत्पन्न करते हैं जैसे वो हमारे बूढ़ावस्था में ठीक से रहें, बच्चों से भी नहीं बनती, बड़े हो जाते हैं उनकी विवाह शादी करती, वो भी अपना अपना देखने लग चले जाते हैं, उनसे भी दोनों भाइयों में भी नहीं बनती, पास पड़ोसों से भी नहीं, किसी बात से के लिए झगड़ा हो जाता है, राष्ट्र इतने परस्पर राष्ट्र अभी देखिए बिना कारण का कारण, अभी यूगोस्लाविया में क्या हो रहा, पहले इराक या ईरान में क्या हुआ, कहां कहां, ये कोई शांति और सुख से नहीं है, विशेष करके ये कलयुग में बिना कारण ही आप दोनों भजन कर रहे हैं, दो व्यक्ति, कोई भी बुरा उद्देश्य नहीं, किंतु किसी कारण से दोनों में ही अनबन हो गई, एक दूसरे का मुख नहीं देख सकते। क्यों? जानते हैं जी, वो भी भगवान का भजन कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो भी हमारी स्त्री दिन रात भजन करती है, उससे विरोध का कारण क्या है? वो हमारा कल्याण चाहती है और हम उसका कल्याण चाहते हैं, विरोध क्यों? ये कली है, ये काल ही कुछ ऐसा है। सतयुग में ऐसा नहीं होता है, कुछ काल का भी प्रभाव है। आप बेटी के लिए सर्वस्व सब कुछ किया और वही आप पर बंदूक का घोड़ा तानता है बिना किसी कारण के। जिसके लिए आपने सर्वस्व किया उसी से लड़ाई हो जाती है। शत्रु जो होते हैं वो जो किसी कारण, वो फिर उनमें फिर भी मित्रता हो जाती और फिर उनमें भी झगड़ा हो जाता है। ये कली काली है। विशेष करके एक अर्थ ऐसी चीज है, जब अर्थ पर विश्वास होने लगता है तो स्त्री पर भी विश्वास नहीं करता, बेटों पर भी विश्वास नहीं करता, पिता पर भी विश्वास नहीं करता, बैंक बैलेंस अलग अलग होने लगता है और फिर ये विवाद लग जाता बिना कारण का। अरे पैसा किस लिए हम रोजगार करते हैं? स्त्री और बेटे के लिए तो, और बेटा भी जानता है ये किस लिए कर रहे हैं, हमारे लिए ही तो, किंतु फिर भी सब्र नहीं होता। तो कोई कारण न होने पर भी परस्पर ये होना, ये कली का भी कुछ कार्य है। कलयुग में केवल एक यही बात है, इतनी समस्याएं होने पर भी यदि कोई जानते हुए अनजान में भी भगवान का नाम कर ले, बस उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष जो समस्याएं हैं रहें, कोई बात नहीं, जरा धैर्य के साथ में रहे, विचार करे वैराग्य के साथ में, किस लिए, इन्हीं लोगों के लिए तो। पिता किस लिए करता है? अपनी पत्नी और बेटे के लिए ही तो करता है। और पत्नी किस लिए करती है? अपने बेटे और स्वामी के लिए तो सर्वस्व करती है। विवाद नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बात, जब उसने अपना सारा जीवन दे दिया हमें तो थोड़ी सी बात के लिए क्यों बात को बतंगड़ करना है? उसमें बात में कुछ नहीं है, केवल समझने का हेर फेर है, थोड़ा सा समझ लिया जाए बस समस्या हो जाए, कोई मतभेद का कारण है कभी हो जाता है। इसलिए ये कली है, विशेष करके कोई कारण नहीं होने पर भी ये विवाद खड़ा कर देता है। अब कली आने वाला था और भारतवर्ष के करीब 88,000 ऋषि लोग नैमिषारण्य में विचार करने के लिए आए कि अब तो कली आ रहा है, बड़ी भयंकर, हम लोगों में झगड़ा पैदा कराएगा और भगवान को स्मरण करा देगा, इसे क्या ऐसी कोई चीज की जाए जिससे कि हम लोग भी बचें और संसार को भी बचा सकें। उसी समय में सूत गोस्वामी थे, उग्रसभा, ये सुखदेव गोस्वामी के शिष्य थे और उन्होंने भागवत श्रवण किया था परीक्षित महाराज जी की सभा में, और अभी छोटे से बच्चे थे, बहुत कुशाग्र बुद्धि के, सारा श्रीमद् भागवत मुखस्थ, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण, परम विरक्त। उनसे इन लोगों ने पूछा क्या, मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है, विशेष करके ये कलयुग विशेष करके आने वाला है। थोड़ी सी आयु होगी, कितनी आयु, सत्ययुग में लाखों वर्ष की आयु होती थी, बहुत बुद्धि होती थी, 10,000 वर्ष तो बिना पानी पिए ही रहते थे और बिना हवा पिए। हिरण्यकश्यप और बड़े बड़े लोग, ध्रुव इत्यादि की तपस्या, सब सत्ययुग की बात, इसलिए लाखों वर्ष की आयु होती थी। और त्रेता युग में कम गई, आधा हो गया, तो भी 50-60,000 वर्ष की उम्र भी रहती थी, और उससे द्वापर आया तो उसमें भी और आधा का आधा का आधा हो गया। कलयुग में अधिक से अधिक साधारण रूप में, अनुपात रूप में 100 वर्ष की आयु रखा गया। 100 वर्ष में, कोई 50 वर्ष में ही, कोई कुछ और कम में, कोई 60 में, 70 में, 80 में, अब तो कुछ वैज्ञानिक उन्नति होने से थोड़ी सी आयु और बढ़ गई। किंतु मान लिया कि जब 100 वर्ष की आयु है, कितनी समस्याएं। सोने में 50 वर्ष गया, 50 वर्ष जगते, 50 वर्ष सोने। और जो अजितेंद्रिय व्यक्ति हैं, जिनकी इंद्रियां दमन नहीं हुई है, शराब पीने वाले और गंदे काम करने वाले और सब, उसका उससे भी अधिक। अंततः आधी आयु तो सोने में और इधर में चली गई। 20 वर्ष तक लिखने पढ़ने, बचपन और लिखने पढ़ने तक एक्सपर्ट होने में आजकल 24-25 वर्ष भी चला जाता है किसी विषय में एक्सपर्ट होने के लिए, डिग्री हासिल करके अपने रोजगार कर सके। तो ये 20 वर्ष भी ऐसे गया। और उधर में 80 से 100 तक ये 20 वर्ष आयु कुछ कर नहीं सकते, इसलिए 60 वर्ष में ही रिटायरमेंट गवर्नमेंट देती है। किस लिए जानते कि अब 60 वर्ष के बाद में अधिक नहीं काम कर सकता, इसलिए उनको हटा देती है, उनको पेंशन दे करके हटा करके भी, दूसरों को महीना दे करके, इनको पेंशन दे करके भी संतुष्ट रखती है, किंतु इनसे काम अधिक नहीं होगा। तो 80 वर्ष से 100 वर्ष में आदमी कुछ काम नहीं कर सकता, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो वो 20 और वो 20, 40 और
50
और आधा चला गया, बाकी रह गया 10 वर्ष। इसमें इतने काम, धंधा, विवाह, शादी, बच्चे को पालन पोषण, घर बनाना और सब काम, कब भगवान का भजन करेगा। इसलिए बड़े लोग चिंतित थे। उन्होंने उनसे पूछा, जैसे हम लोग कैसे कल्याण हो, कोई क्या करें। सब लोगों ने मिलकर के स्थिर किया, हम लोग तो विरक्त सन्यासी साधु जैसे हैं, हम लोग बैठ करके भगवान की कथाओं को सुने और तत्व तो सब समय चिंतन करे, भगवान का चिंतन करे, कली हमको स्पर्श न करे। इसलिए उन्होंने सत्र बनाया, सत्र माने कथाओं का सत्र। आजकल अन्न का सत्र भारतवर्ष में बहुत चलता है। सत्र माने क्या है? वहां पर रोटी वोटी बनती है, रोटी सब्जी हलवा तलवा सबको दिया जाता है, जो आए अन्न क्षेत्र। तो वहां पर कथा का क्षेत्र नहीं का, जो आए हरि कथा सुने, कोई भी रुकावट नहीं। तो वहां पर लगा और वहीं पर उन्होंने कहा कि कैसे संसार में सहज से सहज रूप में जीवों का कल्याण होगा। कली काल में एक तो आयु कम और उसमें समस्या, बचपन से ही समस्या, दिन रात दूसरी चिंताएं करते हैं। इसलिए ऐसा क्या किया जाए यही हमारी आत्मा का कल्याण हो, यही चिंता कर रहे थे। सुत गोस्वामी छोटे उम्र में होने पर भी उनको बैठाया व्यास गद्दी पर और वो भगवत का प्रवचन करने लगे। ये सुनिए आप लोग, इसी से कल्याण होगा। इसमें भगवान की लीला कथाएं हैं, तत्व ज्ञान है, इसमें कुछ नहीं करने, केवल सुनने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि कोई भगवान की कथाएं नहीं सुनता, चाहे लाख बैरागी और त्यागी है, चाहे धार्मिक है, भगवान का नाम ही नहीं करता, उसका कल्याण होना बड़ा भारी मुश्किल है। इसलिए भागवत की कथा उन्होंने आरंभ की। आज हम आरंभ कर रहे हैं। आप समस्त शास्त्रों को अध्ययन करने वाले हैं। ब्रियु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम् अपि, करें कि देखो गुरु का कर्तव्य है, शिष्य यदि स्निग्ध है तो उसे कोई चीज छिपा करके नहीं रखता। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए, यदि शिष्य पुत्र अच्छा है, पिता का आदेश पालन करने वाला है, तो उसे कुछ भी नहीं छिपाता, अपनी सारी चीजों को उसे दे रहा है। उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को यदि स्निग्ध हो तो सारी चीजों को जो उसने अनुभव किया सारे जीवन में भगवान का भजन करके, कैसे वो सुखी है, उस सबको उसको बतला देता है। आप मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपदत्र। ये कली काल में एक तो उम्र कम और काम बहुत बचपन से ही मंदा, उनका भाग्य भी मंद, काम करते हैं बिजनेस में ठप हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, समस्याएं आ जाती। सुमंद मतयो मंद भाग्य भी है और तरह तरह से उपद्रव हैं, तरह तरह से रोग हैं, भूरी कर्माणी बहुत से काम उनको करने हैं बचपन से ही, स्वतव्यान विभाग सब और बहुत सी चीजें, देश में क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, घर में क्या हो रहा, वहां तरह तरह की समस्याएं। अतः साधु अत्र ही महान पुरुष जब सारम समस्त अपनी बुद्धि से जो आपने शास्त्रों का निचोड़ जो आपने किया है वो अपनी बुद्धि से आ करके हमें बतलाइए। ब्रूहि न शब्द धानो जेनात्मा प्रसम प्रसिद्धति, जिसे हमारी आत्मा प्रसन्न हो, संसार में रहते हुए भी हम प्रसन्न रहें और इसके बाद भी हम प्रसन्न रहें, आप ऐसी कोई बात लाए। तब उन्होंने प्रणाम किया सुखदेव गोस्वामी को, अपने गुरु को। यं प्रव्रजन तम अनुपेत अपेत कृतम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे तन्मयतया करो भिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमासुम। जस्वानुभाव अखिल स्तुतिसारमेक अध्यात्म दीपम अतितरसतां तमोन्दम संसारिणां करुणाया पुराण गुह्यं तं व्यासोन्मोपयामि। उन अपने गुरु जी को प्रणाम किया। किस रूप में प्रणाम किया? हम लोग अब कल से आरंभ करें। बहुत सुंदर और मधुर कथा होगी, नींद भी नहीं आएगी। मधुर कथा सर्व सहज भाषा में मैं बतलाऊंगा। तब एक बात करूंगा, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और शुद्ध कल्याण के लिए। इसमें कुछ बातें ऐसे भी आएंगी जो जरा कठोर मालूम पड़ेंगी, कठोर सत्य जिसको कहते हैं, कठोर सत्य समझते हैं ना, अप्रिय सत्य। जैसे आपको कोई रोग हो गया और मैया पंखा दे रही है, थोड़ा फुंसी हो गया, आपको जलन हो रही है, कष्ट हो रहा है और घाव बिगड़ गया है, तो थोड़े मुख से ऐसे करने से थोड़े अच्छा होगा, या पानी से ठंडा देने से वो नहीं होगा। उसको तो ऑपरेशन करके उसके मवाद को, उसके चीजों को अलग हटाना है ना, तो ये अप्रिय कार्य है, किंतु है ही वही मंगल का। ऐसे श्रीमद् भागवत में जो हमारी जहां जहां आसक्तियां हैं, जो हमारे अंदर में कमियां हैं, वो खोल करके बतला देंगे और हम लोगों को उसमें स्वीकार करने पड़ेगा, क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त ग्रंथों के बनाने के बाद भी व्यास जी को प्रसन्नता नहीं, इसी से प्रसन्नता हुई। इसमें सत्य रूप में, निरपेक्ष रूप में, अच्छा लगे बुरा लगे लोगों को, किंतु अच्छी बात बतलाई थी, इसे हमारा कल्याण। इसलिए आप लोग खूब सावधानी से श्रवण करेंगे और जहां तक हो सके इसको वेद जैसा मानेंगे, इस पर विश्वास के साथ में सुनेंगे, देखेंगे जैसा इसी तरह से रहेंगे मालूम नहीं होगा, किंतु जीवन में सुखी और शांति हो जाएंगे और भविष्य के लिए भी आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। आज यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। गौर प्रमाणं ये और एक बात करना, अब कल से भागवत के प्रारंभ में और अंत में आरती की व्यवस्था रखना। एक छोटा सा प्रदीप यदि हो तो ले आइए, है बनाई है, अच्छा तो एक कीर्तन कर लो तब लेकर के, अब कीर्तन हो जाए तब उसको जला करके ले आना, आरती खाए।
गोविंद जय
drop off, love comes for Krishna, then what becomes?
What is the symptom?
And he becomes mad. He never looks here and there. Father, mother, wife, husband, girlfriend, wife. Oh, Krishna. So gopis are telling, don't hear the pastimes of this wonderful Krishna. Never. The pastimes of Krishna. These pastimes are like hunters.
They will shoot you.
And then you will be of nowhere. Your worldly happiness will go away. Then you will be like that. Weeping, weeping. Your father, mother, husband, all will weep. And you will be for Krishna, they will weep for you. So don't hear the pastimes. And don't go to Vrindavan. I told them, but they never
listen.
And that is why they are like
mad.
क्या करेगी?
और जब आए उस समय समय नहीं था, रात हो गई थी बहुत, इसलिए दिल है अभी.
They should try to follow me. So tell them that he should not be worried and but he should stop his.
No, he should continue his interest in developing,
yes,
building a
bridge. Yes. Maharaj has so much appreciation for you that you can. And if the disciple has done, then he has done
wrong.
Hare Krishna, Hare Krishna. ये किया और गुरुदेव का कीर्तन ही नहीं किया. नवीन को दे आओ, ये सबको हमारे लिए जो है थोड़ा सा इसमें से कोई चीज रख लेंगे. और ये कर देना, जैसे कुंडरी को मत देना, उसकी नाक गड़बड़ हो जाएगी. कुंडरी को मत देना
के बाद बोले तीन जताई कुंडरी को दे के बाकी तो पानी.
हरे कृष्णा. देखो इसके पुंडरी का साथ संग करता है.
नाक की बात कही तो नाक में पानी आ रहा है.
अरे ये ऐसे
साथ ही भाग रहा है. He took bath in the
morning, so. And he saw this delicious. Yeah, there is no sun to run.
आपका मतलब जीभ में इतना पानी आया कि नाक तक बाहर आ गई.